ये एक बहुत पुरानी झोपड़ी का कमरा था। कमरे की दीवार मिट्टी की बनी हुई थी और छत भी शायद लकड़ी और मिट्टी के खप्परैलों के साथ घास फूस की ही थी। जगह जगह से दीवारों की मिट्टी टूटकर गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये दीवार खुद अपना बोझ उठाने में नाकाम हो रही थी, तो छत का बोझ कैसे थाम सकती थी। कभी भी ये हद से ज्यादा पुरानी झोपड़ी गिर सकती थी। रोशनी के लिए कमरे में ही बनाए हुए एक छोटे से मिट्टी के तख्ते पर एक मिट्टी का टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। उसकी रोशनी इतनी मध्यम थी कि वो अपने आसपास भी बहुत मुश्किल से रोशनी बिखेर पा रहा था। बाकी पूरे कमरे में अंधेरे का ही साम्राज्य था। तभी एक तेज बदबूदार हवा का झोंका उनकी नाक से टकराया। पूरे कमरे में एक सड़ी हुई बदबूदार दुर्गंध फैली हुई थी। ये बदबू ऐसी थी जैसे कि कहीं चमड़ा जल रहा था या फिर बालों के जलने की दुर्गंध थी। पर जो भी हो, ये दुर्गंध शत्रुपा देवी के बर्दाश्त के बाहर थी। शत्रुपा देवी को उस दुर्गंध से घुटन जैसी महसूस हो रही थी। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर बाहर भाग जाना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, वरना इस सड़ी हुई दुर्गंध ने तो उनका सांस लेना भी दूभर कर दिया था। इस दुर्गंध से उनका जी मिचला रहा था, उन्हें उल्टी करने का मन हो रहा था। किसी तरह से अपनी उपकाई को रोकते हुए उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर ही पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अंधेरे में सब कुछ तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर उन्होंने अंधेरे में भी देखने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी आंखें इस अंधेरे में भी कुछ कुछ चीजों को देखने में कामयाब हो चुकी थीं। तभी उन्हें ऐसा लगा कि दूसरी ओर की दीवार में शायद एक दरवाजा है, जहां से बाहर की चांदनी छिटक कर दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही है। दरवाजे के नीचे फैली हुई रोशनी से ही उन्हें इस दरवाजे के वहां होने का अनुमान हुआ था। वो वहां से निकलने का प्रयास करने लगी। वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए दीवार की तरफ जा ही रही थी कि तभी अंधेरे में उनका पैर किसी चीज से टकराया और एक जोरदार हड्डी के टूटने जैसी आवाज हुई। ऐसा लगा कि उनके पैर में भी शायद इस हड्डी के टूटे हुए टुकड़े अंदर तक चुभ रहे थे। उन्होंने नीचे झुककर देखना चाहा, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नीचे झुककर अपने पैरों के पास से वो टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े को उन्होंने उलट पुलट कर उस दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी में देखना चाहा। उसको देखते ही उनके होश उड़ गए। ये तो एक इंसानी खोपड़े का हिस्सा है, पर ये यहाँ कैसे? एक डर ने शत्रुपा देवी को अपने अंदर जकड़ लिया था। शत्रुपा देवी ने तेजी से अपने हाथ में लिए हुए उस हड्डी के टुकड़े को झटके से अपने से दूर फेंक दिया, लेकिन वो हड्डी का टुकड़ा जाकर किसी दूसरी हड्डी से टकराया और कमरे में दो हड्डियों के एक साथ बजने की आवाज हुई। आवाज इतनी तेज हुई थी जैसे लगा कि एक जोरदार विस्फोट हुआ है। एक तो इतनी तेज आवाज और ऊपर से इस विस्फोट के साथ एक काला धुआं भी पूरे कमरे में फैल गया था। डर के मारे शत्रुपा देवी की चीख निकल ही जाती, लेकिन उन्होंने अपने होठों पर अपनी चीख को दबाने के लिए अपना हाथ रख लिया था। कुछ देर के बाद ये काला धुआं धीरे धीरे साफ होने लगता है और अब तक अंधेरे में देखने में कामयाब हो चुकी आंखों से उन्हें पूरे कमरे के फर्श पर सिर्फ इंसानी खोपड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने उन्हें केवल इंसानी खोपड़ियों के बीच में खड़ा कर दिया है। जिधर भी नजर जाती थी केवल इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां ही नजर आ रही थीं। शत्रुपा देवी डर के मारे कांपने सी लग जाती हैं। उनकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए किसी तरह से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी शुरू कर दी। किसी तरह से उन इंसानी खोपड़ियों के बीच में तो कहीं उन खोपड़ियों के ऊपर ही अपना पैर जमाते हुए धीरे धीरे निकलकर वो उस दरवाजे के नजदीक तक आने में कामयाब हो जाती हैं, जहां से बाहर की चांदनी छिटक कर अंदर हल्की हल्की दरवाजे के नीचे से आ रही थी। दरवाजे पर आकर उन्होंने अपना वो हाथ अपने मुंह पर से हटाया जो कि उन्होंने अपनी आ रही उपकाई को रोकने के लिए रखा था। हाथ हटाते ही फिर वो तेज दुर्गंध उनके नाक से टकराई और इस बार उसने उनके दिमाग तक को सुनकर रख दिया था। खुद को संभालते हुए उन्होंने किसी तरह से अपने दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ दरवाजे को खोलने के लिए बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी अचानक से एक बिच्छू तेजी से उनके हाथों पर चढ़ने लगा। अपने आप को बिच्छू के डंग से बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों को छटकना शुरू कर दिया, लेकिन वो बिच्छू उनके हाथों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था और शत्रुपा देवी को अपने पूरे शरीर में उस बिच्छू के चलने से गनगनाहट सी महसूस हो रही थी। इस गनगनाहट से उनके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था। शत्रुपा देवी को ऐसा लग रहा था कि एक साथ कई जहरीले कीड़े अब धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपने दूसरे हाथ से उस बिच्छू को पकड़कर अपने से दूर छटक दिया। अब शत्रुपा देवी वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती थी। इस अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, लेकिन ऐसा जरूर आभास हो रहा था कि चारों तरफ से जहरीले कीड़े और बिच्छू ने उन्हें घेर रखा था। किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए उन्होंने एक ही झटके में दरवाजे को खोल दिया। पर क्या वो इसके बाहर आ सकी? जानने के लिए करें अगले भाग का इंतजार। हर हर महादेव।